नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं नवीन सक्सेना। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने क्वालालंपुर में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने वैश्विक समुदाय से आतंकवाद के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई करने का आग्रह करते हुए इसके खिलाफ रक्षा के अधिकार पर बल दिया। नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने काठमांडू में दो नव नियुक्त मंत्रियों को शपथ दिलाई। कैमरून के राष्ट्रपति 8वीं बार फिर से निर्वाचित और दुबई में 3 दिन का एशियाई प्रशांत शिखर सम्मेलन और मेयर फोरम शुरू हुआ। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि आतंकवाद वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए सबसे बड़े खतरों में से एक है और दुनिया को इसे कतई बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। मलेशिया में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में श्री जयशंकर ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ रक्षा के अधिकार से कभी समझौता नहीं किया जा सकता। उन्होंने वैश्विक समुदाय से इसके विरुद्ध सामूहिक कार्रवाई करने का आग्रह किया। यूक्रेन और गाजा में संघर्ष का उल्लेख करते हुए डॉ जयशंकर ने गाजा शांति योजना का स्वागत किया और यूक्रेन में शत्रुता को शीघ्र समाप्त करने के भारत के आह्वान को दोहराया। विदेश मंत्री ने सम्मेलन से अलग वियतनाम के विदेश मंत्री एम एल हुई ट्रंग से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं ने भारत और वियतनाम के बीच रणनीतिक साझेदारी और द्विपक्षीय आर्थिक जुड़ाव को गहरा करने पर चर्चा की। विदेश मंत्री ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ से भी मुलाकात की। विदेश मंत्री ने जापान के विदेश मंत्री मोटेगी तोशिमित्सू से भेंट की। दोनों नेताओं ने भारत और जापान के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की। श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों देश अगले दशक के सहयोग के संयुक्त दृष्टिकोण को लागू करने के लिए मिलकर काम करने पर सहमत हुए। उन्होंने वैश्विक स्थिति और हिंद प्रशांत सहयोग पर भी अपने विचारों का आदान प्रदान किया। उन्होंने कहा कि उनकी बातचीत भारत और जापान के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी की मजबूती और गर्मजोशी को दर्शाती है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में यूरोपीय संघ के व्यापार और आर्थिक सुरक्षा आयुक्त मारोस सेवकोविच से मुलाकात की। श्री गोयल ने कहा कि उनकी चर्चा भारत यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते FTA को शीघ्र लागू करने की प्रतिबद्धता पर हुई। उन्होंने बताया कि दोनों पक्ष तीव्र संतुलित और आपसी हित के समझौते के प्रति अपनी साझी प्रतिबद्धता व्यक्त करते हैं। इससे पहले दिन में श्री गोयल ने जर्मनी के विदेश मामलों के संघीय मंत्री जोहान विटफुल के साथ भी विचार विमर्श किया। उन्होंने बताया कि इस चर्चा से भारत और जर्मनी के बीच मजबूत रणनीतिक साझेदारी और भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते FTA को शीघ्र लागू करने की प्रतिबद्धता की पुष्टि होती है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने सेशल्स के नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति सेबेस्टियन पिल्ले से मुलाकात की। श्री राधाकृष्णन ने कहा कि इस दौरान भारत सेशल्स के साझा विरासत, संस्कृति और लोगों के आपसी तालमेल पर आधारित बहुआयामी संबंधों पर चर्चा हुई। उपराष्ट्रपति ने श्री पिल्ले को उनके सफल कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA के 8वें सत्र में मुख्य भाषण देंगी। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी भी उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। 4 दिन के कार्यक्रम में 124 देश और 40 से अधिक मंत्री भाग ले रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कार्यक्रम के दौरान सदस्य देश प्रगति की समीक्षा, चुनौतियों के समाधान और सभी के लिए किफायती सौर ऊर्जा के लक्ष्य को प्राप्त करने पर विचार विमर्श करेंगे।
अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सौर ऊर्जा के दृष्टिकोण को आगे बढ़ा रहा है। भारत ने 2030 के लक्ष्य से 5 साल पहले ही अपनी कुल स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता का 50% गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से प्राप्त कर लिया है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सौर उत्पादक और नवीनकरणीय ऊर्जा विकास के लिए दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बाजार है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त योजना के तहत 20 लाख से ज्यादा परिवार अपनी छतों पर सौर ऊर्जा का लाभ उठा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन 124 सदस्य और हस्ताक्षरकर्ता देशों वाला एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। यह दुनिया भर में ऊर्जा की पहुंच और सुरक्षा में सुधार लाने और कार्बन तटस्थ भविष्य की ओर एक स्थायी बदलाव के रूप में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सरकारों के साथ काम करता है। यह कृषि, स्वास्थ्य, परिवहन और बिजली उत्पादन क्षेत्रों में भी सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देता है। नई दिल्ली से रहीसुद्दीन रिहान के साथ विश्व दर्पण के लिए सकलैन अख्तर।
विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @ARR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने काठमांडू में 2 नवनियुक्त मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। डॉक्टर सुधा शर्मा गौतम नई स्वास्थ्य और जनसंख्या मंत्री और बबलू गुप्ता खेल मंत्री बनाए गए हैं। डॉक्टर सुधा शर्मा गौतम ने आज जेंजी विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल हुए लोगों से मुलाकात की। डॉक्टर गौतम इससे पहले स्वास्थ्य मंत्रालय में सचिव के रूप में कार्यरत थीं। बबलू गुप्ता को जेंजी आंदोलन के एक नेता के रूप में जाना जाता है। दुनिया के सबसे उम्रदराज शासक पॉल बिया 8वीं बार फिर से कैमरून के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। उन्हें 53% से अधिक मत प्राप्त हुए। विरोधी नेता तचिरोमा बेकरी को 35% से ज्यादा वोट मिले। बिया ने 1982 में पदभार संभाला था और तब से लगातार सत्ता में बने हुए हैं। उन्होंने 2008 में राष्ट्रपति पद की सीमा को समाप्त कर दिया और बड़े अंतर से दोबारा चुनाव जीते। 1960 में फ्रांस से आजादी के बाद से बिया कैमरून का नेतृत्व करने वाले दूसरे राष्ट्राध्यक्ष हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के परमाणु ऊर्जा से संचालित क्रूज मिसाइल के परीक्षण को अनुचित बताया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कल बताया कि रूस ने परमाणु सक्षम बुरे वेस्तनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ये देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रयासों का हिस्सा है। बलूच राष्ट्रीय आंदोलन BNM ने बलूचिस्तान के जहरी क्षेत्र में जारी पाकिस्तान की सैन्य घेराबंदी और आक्रामक कार्रवाई के विरोध में दक्षिण कोरिया के बुसान में प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तानी सेना पर बलूच लोगों पर युद्ध अपराध करने का आरोप लगाया। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सेना को जवाबदेह ठहराने पर भी बल दिया। प्रदर्शनकारियों के अनुसार पाकिस्तानी सेना हाल ही में किए गए हवाई हमलों में 10 बच्चों सहित 20 से अधिक लोग मारे गए और 50 से अधिक युवक लापता हैं। दुबई में आज एशिया प्रशांत शहर शिखर सम्मेलन और महापौरों के मंच का आधिकारिक उद्घाटन हुआ। दुनिया भर के 600 से ज्यादा शहरों के 15,000 से ज्यादा नीति निर्माता और नव प्रवर्तक इसमें शामिल हुए। 29 अक्टूबर तक चलने वाले 3 दिन के सम्मेलन में सहयोग करें, प्रेरित करें, परिवर्तन करें में 118 महापौर, उप महापौर, व्यावसायिक अधिकारी और युवा पेशेवर एक साथ आ रहे हैं। संयुक्त अरब अमीरात के थलसेना कमांडर मेजर जनरल यूसुफ मायूफ सईद अल हल्लामी आज से भारत की आधिकारिक यात्रा पर हैं। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इस यात्रा का उद्देश्य द्विपक्षीय सैन्य सहयोग को मजबूत करना और सहयोग के नए क्षेत्रों, विशेष रूप से प्रशिक्षण, क्षमता संवर्धन और रक्षा प्रौद्योगिकी का पता लगाना है। उनकी ये यात्रा भारत संयुक्त अरब अमीरात रक्षा संबंधों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है और दोनों देशों के बीच गहरी होती साझेदारी को दर्शाता है। माली में इस्लामी कट्टरपंथियों द्वारा ईंधन आयात पर लगाए गए प्रतिबंध के कारण ईंधन की भारी कमी हो गई है। सरकार ने स्कूलों और विश्वविद्यालयों को 2 सप्ताह के लिए बंद कर दिया है। खेलों में अनाहत सिंह कनाडा ओपन स्क्वाश टूर्नामेंट के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। प्री क्वार्टर फाइनल में उन्होंने विश्व की 20वें नंबर की खिलाड़ी फ्रांस की मेलिसा अल्वेज को हराया। अगले दौर में उनका मुकाबला दूसरी वरीयता प्राप्त बेल्जियम की टीने गिलिस से होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने क्वालालंपुर में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने वैश्विक समुदाय से आतंकवाद के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई करने का आग्रह करते हुए इसके खिलाफ रक्षा के अधिकार पर बल दिया। नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने काठमांडू में 2 नवनियुक्त मंत्रियों को शपथ दिलाई। कैमरून के राष्ट्रपति 8वीं बार फिर से निर्वाचित। और दुबई में 3 दिन का एशियाई प्रशांत शिखर सम्मेलन और मेयर फोरम शुरू हुआ। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।